श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 34। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवैष्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। जो पूरा वैदिक साहित्य है, पूरे वैदिक साहित्य का सार भगवद गीता को कहा गया है। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सारे उपनिषद, सारे वेद, उनका निचोड़ बताया गया है। जैसे कि एक गाय का सारांश होता है गाय का दूध, वैसे ही सारे उपनिषद का सारांश है ये भगवद गीता। सर्व उपनिषदो गावो, गावो का अर्थ है गाना नहीं, गावो का अर्थ है गाय। तो सभी उपनिषद की तुलना गाय से की गई है। दोग्धा गोपाल नंदना, और भगवान श्री कृष्ण जो कि गोपाल हैं, वो इस गाय को दूह रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं। और भगवान इन सब उपनिषदों में से जो सार निकाले हैं या गाय का ये जो दूध निकाल रहे हैं वो है गीतामृतम, भगवद गीता। और पार्थ वत्स, पार्थ अर्जुन जो कि वत्स के समान है, जो इस गाय के दूध का पान कर रहे हैं। और गाय का जो दूध होता है वो केवल वत्स के लिए नहीं रहता, केवल उस बछड़े के लिए नहीं रहता, बल्कि मनुष्यों के लिए भी रहता है। तो अर्जुन के साथ साथ हम सब के लिए ये गीतामृत का ज्ञान भगवान ने दिया। तो भगवद गीता को सारे उपनिषद और वेद का सार बताया गया है। और भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं, भगवद गीता का सार यदि हम देखें, विभाजित करें भगवद गीता को 3 भागों में, तो 6-6 अध्याय आएंगे। पहले 6 अध्याय, फिर मध्य के 6 अध्याय और अंतिम 6 अध्याय, ऐसे 18 अध्याय। तो भगवद गीता का फिर सार क्या है, जो मध्य के 6 अध्याय है, जिसमें भगवान ने केवल भक्ति योग के ही विषय में बताया है। तो भगवद गीता सारे वैदिक साहित्य का सार, और भगवद गीता का सार है बीच के 6 अध्याय। और इन बीच के 6 अध्यायों में से जो सार है वो है ये 9वां अध्याय। और इसलिए इस 9वें अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, जो सबसे ज्यादा गुह्य वस्तु है, गुह्य ज्ञान है, वो भगवान इस 9वें अध्याय में, जो कि भगवद गीता के 6 अध्यायों का सार है उसमें। और 9वें अध्याय का सार यदि हम लें तो ये श्लोक जो आज हम लिए, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्को। तो कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। देखिए सारे वैदिक साहित्यों के सार में से सार का भी सार निकला हुआ निचोड़ है ये श्लोक, अंतिम श्लोक इस नवे अध्याय का। और श्रील प्रभुपाद इस श्लोक पर बहुत व्याख्या किए हैं, क्योंकि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से बता रहे हैं कि भगवद गीता के द्वारा हमें क्या करना है, भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा हमें क्या करना है। इस परम गुह्य ज्ञान के द्वारा हमें हमारा मन भगवान में लगाना है, परंतु भगवान में मन कब लगेगा? भगवान कहते हैं जब मेरे भक्त बनोगे। तो मन मना भव मद भक्तो, जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनेंगे तब तक भगवान में मन नहीं लगेगा। चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, हमारा मन वहीं पर जाता है जहां जिसके हम भक्त होते हैं। केवल कंठी माला तिलक लगाने से भक्त नहीं हो जाता कोई। यहां पर भगवान बता रहे हैं, ये इस श्लोक में कहीं पर यह नहीं कहा गया है कि कितना लंबा तिलक होना चाहिए, कितना राउंड कंठी माला का होना चाहिए, कितनी मोटी कंठी माला होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि मन तभी मुझ में लगेगा जब मेरे भक्त बनोगे। मेरे भक्त बनोगे तब जाकर मन लगेगा। ये दोनों आपस में निर्भर है एक दूसरे के ऊपर। और भक्त हम कैसे बने, ऐसा नहीं कि बस हाँ अब आज से मैं सबको बोलूंगा कि मैं भक्त हूं भगवान का। यहां पर भगवान कहते हैं मद्याजी, कि अपने इंद्रियों से भी मेरी भक्ति में लगना है। क्योंकि जब मन भगवान में लग रहा है तो अपने आप इंद्रियां भी भगवान में लगेंगी। वो इंद्रियां अलग से और कहीं नहीं जा सकती, वो मन के पीछे पीछे ही इंद्रियां जाएंगी। तो जब इंद्रियां भगवान में लग रही हैं तो इंद्रियां कैसे भगवान में लगेंगी? माम नमस्कुर। सबसे पहले हम भगवान को अपना नमन करेंगे। नमन का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक रूप से दंडवत कर देना नहीं। ऐसा नहीं कि हम बहुत लंबा चौड़ा दंडवत कर सकते हैं इसलिए भगवान के भक्त हैं, बहुत समय तक दंडवत कर सकते हैं इसलिए भगवान के भक्त हैं, नहीं। नमस्कुरु का अर्थ है कि हमें हमारी चेतना को, जो कुछ हमारा सर्वस्व है, वो भगवान के सामने डाल देना है, उन्हें उनके सामने अपने आप को अपना सर्वस्व प्रस्तुत करना है। और भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जो युक्त रहता है, युक्त्वैव आत्मान, इस प्रकार से जो युक्त रहता अपने मन को अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से मुझ में लगाने में, तो भगवान कहते हैं वो मुझे निश्चित ही प्राप्त करता है। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि भक्ति वो गुणात्मक दृष्टि से ज्यादा करनी है हमें, क्योंकि हरेक शब्द में भगवान ये कह रहे हैं कि इन सब में अपने मन से नमस्कार करना है, मन से भक्त बनना है, मन से चिंतन करना है। तो गुण को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इस भौतिक संसार में भी प्रकृति के ये जो गुण हैं, ये गुणों के वजह से हम फंसते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। और भक्ति भी जब हम भगवान की गुणात्मक दृष्टि से भक्ति करेंगे तब जाकर ये प्रकृति के गुणों से मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। इस भौतिक संसार में देखिए कि जो भी वस्तु का मूल्य लगाया जाता है उसके गुण को देखते हुए लगाया जाता है। सोना, सोना का मूल्य कैसे लगाया जाता है? कितना कैरेट का है, अर्थात गुण क्या है उस सोने का। तो गुणात्मक दृष्टि से जब सोना जितना ज्यादा शुद्ध होता है उतना ज्यादा उसका मूल्य बढ़ता है। पानी, यदि हम एक पानी को भी लें जो रोज हम पीते हैं, वो पानी भी गुणात्मक दृष्टिकोण से जब तक उसमें वो प्यास बुझाने की शक्ति नहीं तब तक उस पानी का भी कोई मूल्य नहीं है। इसलिए भगवान कहे हैं कि पानी में, जल में जो प्यास बुझाने की शक्ति है वो भगवान स्वयं उनकी शक्ति है। पृथ्वी में ये जो शक्ति है जिसके द्वारा धन धान्य उग सकते हैं, इसके कारण उस पृथ्वी का मूल्य है। जैसे आप देखो कि बंजर जो जमीन होती है, बंजर जमीन का कोई मूल्य नहीं लगाता, परंतु जो उपजाऊ भूमि होती है उसका मूल्य लगाया जाता है, क्योंकि उसमें वो गुण है, कुछ उपज करने का गुण है उस भूमि में। अग्नि, अग्नि में गुण है कि अग्नि जला सकती है, गर्म कर सकती है, पका सकती है। तो क्योंकि अग्नि में वो गुण है इसलिए अग्नि का मूल्य उस गुण के वजह से है। सूर्य, सूर्य में भी वो तप्त करने का गुण है, और पृथ्वी, धरती और सूर्य के मिलन से वो धान्य उगता है। तो दोनों के गुणों के वजह से हम कुछ खा पाते हैं। हवा, हवा के अंदर गुण है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, उस गुण के वजह से हम जी रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। तो ये सारे यदि हम पदार्थ ले, वस्तु लें, तो इन सब के अंदर एक विशेष गुण है। हम जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी आकर्षित होने का प्रयास करते हैं तो उनमें गुण ढूंढ रहे हैं। भगवान ने दामोदर लीला की तो भगवान ने अपने गुणों को दर्शाया उस लीला में। भगवान गोवर्धन धारण लीला की तो उसमें अपने गुणों को दर्शाया। अपने नाम में, अपनी लीलाओं में भगवान अपने गुणों को दर्शा रहे हैं। तो उन गुणों से आकर्षित होकर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं। इसलिए हमारी भक्ति भी भगवान को कब आकर्षित करेगी? जब भगवान देखेंगे कि उस भक्ति में कुछ गुण हैं। जैसे हम भगवान से कब आकर्षित होते हैं? जब भगवान में गुण देखते हैं। किसी भी व्यक्ति में कोई गुण देखा जाता है तो आकर्षित होते हैं। एक मदारी जब बंदर को लाकर मदारी का अपना खेल खेलता है तो उसमें भी हम उस बंदर से आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि वो बंदर ऐसे कूद सकता है जैसे हम नहीं कूद सकते, नहीं तो उस बंदर में क्या गुण है? कौन उस मदारी के खेल को देखने जाएगा? सर्कस देखने जाते हैं, ये सब प्राणियों को देखने जाते हैं या मनुष्यों को देखने जाते हैं जो ऊपर नीचे कूदते फांदते रहते हैं, कि हां फिर कोई रस्सी पर इतना ऊपर लटका हुआ है और वहां से वो दूसरी रस्सी पकड़ता है, वो क्यों हम वाह वाह करते? क्योंकि हम नहीं कर सकते, हम में वो गुण नहीं है, किसी और में वो गुण है, इसलिए आकर्षित होते हैं। अब वही सर्कस के जो दूसरे खिलाड़ी हैं उन्हें बहुत बोर लगता है उसमें, अरे तो हम भी कर सकते हैं उसमें क्या। और उन्हें आप कभी नहीं देखोगे कि ऐसे एकटक होकर बिना पलक झपके वो सर्कस का खेल देख रहे हैं। हां उनकी भी पलक नहीं झपकती क्योंकि पूरी नीची रहती है, क्योंकि उनको नींद आती है ये सब में। इसलिए हम उस धारणा में हर समय रहते हैं कि जो गुण मुझ में नहीं है वो गुण जब मैं किसी और में देखता हूं तो मेरे अंदर आकर्षण जागृत होता है। मैं इस व्यक्ति की तरह गा नहीं सकता, मैं इस व्यक्ति की तरह नाच नहीं सकता, मैं इस व्यक्ति की तरह बोल नहीं सकता, मैं इस व्यक्ति की तरह जो भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ खाना नहीं इस व्यक्ति की तरह पका सकता, इस व्यक्ति की तरह मैं श्रृंगार नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान क्यों सबके आकर्षण केंद्र है? क्योंकि जितने भी गुण हम लें वो सारे गुणों के खान हैं भगवान, और वो भी एक साथ और असीमित मात्रा में। इसलिए यदि ऐसे व्यक्ति जो कि इतने गुणवान हैं, जिनको भगवान कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को हम आकर्षित कैसे करें? जैसे हम आकर्षित होते हैं जब ये देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर जो गुण है वो मुझ में नहीं है इसलिए मैं आकर्षित हूं, तो भगवान के पास तो सब कुछ है तो वो क्यों आकर्षित होंगे हमसे? यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं भगवान को आकर्षित करने के लिए सुंदर बनता हूं क्योंकि वो श्याम सुंदर है, तो मैं सुंदर बनने का प्रयास करता हूं तब जाकर वो मुझसे आकर्षित होंगे। कितना सुंदर हम बनेंगे, बनकर भी कितना सुंदर बनेंगे? यहां पर श्रीमती राधा रानी जो सबसे परम सुंदरी हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण इतने आकृष्ट हैं। हम पहले तो आकृष्ट हैं इस भौतिक संसार के जो भी सुंदरता है, मदन, और वो है मदन मोहन, और श्रीमती राधा रानी है मदन मोहन मोहिनी, तो वो हम किस तरह की बात कर रहे हैं? हम कहां स्थित हैं? तो भगवान जो कि गुणवान हैं वो हमसे तभी आकर्षित होंगे जब वो देखेंगे कि एक ऐसा विशेष गुण इसके अंदर मैं देख रहा हूं जो मैं बाकी मनुष्यों में नहीं देखता, जो मैं बाकी जीवों में नहीं देख पा रहा, वो गुण मैं देख रहा हूं। कौन सा गुण? ये मन मना भव मद भक्तो। एक पौराणिक कथा है जिसमें बताया गया कि वशिष्ठ मुनि वो कई ऋषि मुनियों के साथ बैठे हुए थे, और उस समय मार्कंडेय मुनि ने प्रवेश किया उस सभा में। बड़े बड़े दिग्गज थे ऋषि मुनियों के सभा में, जब मार्कंडेय ऋषि प्रवेश किए तो मार्कंडेय ऋषि, उनकी आयु बहुत है, 7 कल्प उनकी आयु उस समय थी। अब हम लोगों को इतना आश्चर्य नहीं लगा होगा कि क्योंकि हम केवल सात जो नंबर है उस पर गौर किए, परंतु उसके आगे क्या कहा गया है, कल्प। एक कल्प कितना होता है आपको थोड़ा अनुमान देते हैं, एक कल्प कितना होता है। कलयुग है 432,000 वर्ष, कलयुग का डबल द्वापर युग था, द्वापर युग का डबल त्रेता युग, त्रेता युग का डबल सतयुग। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन सब को यदि एक साथ जोड़ा जाए कितने वर्ष होंगे? हाँ, 43 लाख। बस आप लोगों के लिए होमवर्क है ये। वो आप उसकी गणना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से, वो सब जो जोड़े हैं उसको 1000 से, वो हुआ 12 घंटे ब्रह्मा जी के। और फिर और 12 घंटे का अर्थ है और 1000, तो वो हुआ एक कल्प। ऐसे सात कल्प मार्कंडेय ऋषि की आयु। तो मार्कंडेय ऋषि ने जब प्रवेश किया इतनी लंबी बड़ी आयु लेकर, तो सभी ने अपना दंडवत उनको दिया। परंतु मार्कंडेय ऋषि दंडवत किए पराशर मुनि, और पराशर मुनि उस समय केवल 7 वर्ष के, वो वशिष्ठ मुनि के गोद में बैठे हुए थे, 7 वर्ष के पराशर मुनि। तो सभी मार्कंडेय ऋषि को पूछे कि आप ये बच्चे को क्यों दंडवत कर रहे हैं? तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मैं 7 कल्प तक जिया हूं, परंतु जितना हरि भजन ये पराशर मुनि ने किया है 7 वर्षों में, उतना मैंने 7 कल्पों में नहीं किया। तो गुणात्मक दृष्टिकोण से ये पराशर मुनि मेरे अग्रज। क्वालिटेटिवली मुझसे सीनियर हैं हरि भजन में। और फिर सभी पूछने लगे कि अच्छा, तो फिर भक्ति के विषय में कुछ बताइए आप, इस हरि भजन के विषय में, हरि भक्ति के विषय में। तो मार्कंडेय ऋषि ने एक कथा सुनाई कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था, और वो ब्राह्मण उसका जीवन ठीक से नहीं वो जी पा रहा था, इसलिए वो ब्राह्मण गलत कामों में लग गया, कुकर्म करने लगा, अलग अलग प्रकार के पाप कर्म में लग गया वो। और रोज वो अपने जीवन यापन के लिए घास इकट्ठा कर बेचता, और जो भी आमदनी उससे होती उसमें वो केवल गलत कार्य करता। तो उसका सारा लेखा जोखा चित्रगुप्त लिख रहे थे। जब तक कि वो ब्राह्मण के कार्य कर रहा था तब तक तो सारा खाता स्वर्ग में लिखा जा रहा था। अब जैसे ही कुकर्म में ये लग गया तो सारा उसका अकाउंट वहां खोला यमलोक में। तो वहां पर चित्रगुप्त सब लिखने लगे कौन सा कुकर्म ये कर रहा है, इतने सारे कुकर्म उसने किए वो घास बेच बेच कर। तो एक दिन वो उसका समय आ गया अब मरने का। उसके भाग्य के अनुसार नसीब जो कहते हैं, तकदीर, उसके अनुसार उसका समय आ गया अब मरने का। और निश्चित किया कि इसका मरण कैसे होना चाहिए, सर्प के डसने से, क्योंकि जंगलों में फिरा करता था घास इत्यादि काटने के लिए, तो सर्प के डसने से इसकी मृत्यु होनी चाहिए। तो ये जंगल में गया हुआ अब यमदूत पीछे पीछे और सर्प को आगे भेजे, पहले तुम डसो फिर हम हमारा काम करें। तो कौन सा सर्प होगा, कौन से समय पे डसेगा, कहां डसेगा, ये सब कुछ निर्धारित हो गया था। और इसके हाथ में वो घास, जो काटी हुई घास, वो अपने हाथ में लिए हुए, तो उसी समय इस ब्राह्मण ने दूर तुलसी का पौधा देखा। तो जैसे ही तुलसी का पौधा ये ब्राह्मण देखा तो ये सोचा, इसे समझ में नहीं आया कि वो तुलसी है। इसे लगा कि कुछ अच्छा पौधा दिख रहा है, चलो इसे भी ले जाएं बेचने के लिए। तो वो घास की पूरी वो जो पोटली थी उसकी, काटी हुई घास, वो पूरी घास काटी हुई अब एक हाथ में लिए वो तुलसी के पौधे की तरफ जाने लगा। और वही उसका समय था जब वो सांप डसने वाला था। तो तुलसी का पौधा लिया और वो घास के साथ तुलसी का पौधा भी रख लिया और अपने हाथों में वो घास और तुलसी। तब तो उसका स्पर्श तुलसी से हो रहा है, तो अब यमदूत चकरा गए, तुरंत फोन आया, हाथ मत लगाना अब इसे। तो यमदूत फिर तुरंत सांप को बोले, डसो मत, अब जब तक वो तुलसी को स्पर्श किए तब तक डसना मत इसे। तो अब इसे तो कुछ समझ में नहीं आ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि सर्प भी पीछे पीछे, उसके पीछे यमदूत भी। तो अब ये जंगल में विचरण कर रहा है, काफी समय तक विचरण कर रहा है, वो तुलसी को हाथ में लिए स्पर्श किए हुए, और पूरे जंगल में वो सांप और पीछे यमदूत सब पीछे पीछे घूम रहे हैं। यमदूत अपनी घड़ी देख रहे हैं, इधर टाइम हुआ जा रहा है। तो इसे थोड़ी थोड़ी भनक लग रही थी कि कुछ मेरे पीछे हो रहा है। तो ये जल्दी जल्दी पैर भरने लगा अपने, वो भी जल्दी जल्दी, फिर सांप भी जल्दी जल्दी। तो सांप बेचारा अब थक गया, बोला कि कितने समय तक मैं घूमूं इसके पीछे। तो सांप भी इस प्रकार से कहे कि यमदूत को आपने टाइम दिया था इतना भी, ये देखो कितना हो रहा है। तो ये नहीं तो तुम सही, किसी तो डसो में। हुआ क्या कि एक वहां पर एक ऋषि मुनि तपस्या किए हुए जंगल में बैठे, तो ऋषि मुनि ने देखा ये सांप और पीछे यमदूत और ये आगे वो घास लिए हुए चल रहा। तो ऋषि मुनि ने, क्योंकि दिव्य उनकी दृष्टि थी तो उनको दिख गया, तो पूछा ये क्या माजरा है। तो यमदूत अब सब बताए कि अरे 1.5 घंटे से हम पीछे घूम रहे हैं इसके। ये जैसे ही वो घास और तुलसी को नीचे रखेगा वैसे ही हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है, लेकिन ये रख ही नहीं रहा। तो अब ऋषि मुनि वो इस बड़ी रोचक दृश्य को देखकर बहुत असमंजस में पड़े और आश्चर्यचकित हुए और बहुत प्रभावित भी हुए। तो वो जाकर इस ब्राह्मण से कहते हैं कि सब कुछ बता दिया उस ब्राह्मण को कि देखो तुम्हारे पीछे ये सांप और ये यमदूत लगे हैं, ये तुलसी को मत छोड़ना बिल्कुल, यदि तुम्हें जीते रहना है तो उसे समझ में आया। और उस ऋषि ने कहा कि ऐसा करो कि अब उसमें से एक तुलसी दल लो और तुलसी दल लेकर भगवान श्री हरि के मंदिर जाओ और उनके चरणों में अर्पित करो। परंतु पूर्ण भक्ति से करना। तो फिर जैसे ही तुलसी दल हाथ में और यहां पर सर्प और यमदूत अब तक पीछे 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 पीछे, और जैसे ही इस ब्राह्मण ने मंदिर में प्रवेश किया श्री हरि के और तुलसी दल उनके चरणों में अर्पित किया, तब फिर कॉल आया वापस आ जाओ आप सब, अब कोई चांस नहीं। और फिर विष्णु दूत वहां पहुंचे और फिर विष्णु दूत उसी समय उस ब्राह्मण को, जिसने ऐसा नहीं कि बहुत मात्रा में भक्ति की थी, गुणात्मक भक्ति केवल कुछ समय के लिए भगवत धाम के लिए प्रस्थान किया उस ब्राह्मण ने, तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि ये है भगवान श्री हरि की भक्ति की महिमा। तो जब यहां पर भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति भी जब तक उस गुणात्मक दृष्टिकोण से नहीं होगी तब तक वो फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कितनी बार भगवान उस भक्ति शब्द को कहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, दो बार उस श्लोक में भक्ति भक्ति, तो इतनी बार जब भगवान कहे भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या त्वनन्या शक्त्या मद भक्तो, ये श्लोक दो बार गीता में आया है, 18वें अध्याय में भी ये श्लोक आया है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है इसलिए भगवान दो बार दो दफे इस श्लोक को कहे। तो यदि हम इस भौतिक संसार में अपनी इंद्रिय भोग के लिए गुणात्मक दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार के गुण ढूंढ रहे हैं, तो क्यों नहीं भक्ति में भी हम उसी धारणा को लगाएं कि गुणात्मक दृष्टिकोण से भक्ति कैसे हो। नहीं तो ये बताया गया है, महाराज कुलशेखर अपने एक सुंदर श्लोक में कहते हैं, आम्नाया भ्यसनान्यरण्य रुदितम वेदवृतान्यन्वहम मेदस चेद फलानि पूर्त विधय सर्वं हुतं भस्मनि तीर्थानाम अवगाहनानि च गज स्नानं विना यत्पद द्वंद्वाम भोरुह संस्रेति विजयते देवसनारायण। इस सुंदर श्लोक में महाराज कुलशेखर कहते हैं आम्नाय, आम्नाय कहते हैं वैदिक ग्रंथों को, तो कह रहे हैं आम्नाय अभ्यास, कि वैदिक ग्रंथों का अभ्यास किसी को बहुत पक्का होगा, किसी का बहुत पक्का होगा वैदिक ग्रंथों का अभ्यास, परंतु उस वैदिक ग्रंथों के अभ्यास में यदि भक्ति नहीं तो अरण्य रुदितम, वो वैदिक जो श्लोक इत्यादि जो भी पाठ कर रहा है उसकी तुलना वो दे रहे हैं अरण्य एक जंगल में रुदितम रोने के समान है। कोई जंगल में कोलाहल कर रहा है, चिल्ला रहा है, अरण्य रुदितम। फिर वो आगे कहते हैं कि जितने सारे वेद व्रत हैं, जैसे उपवास रखना या तीर्थ यात्रा में जाना, तो जितने सारे ये वेद के व्रत हैं, यदि इन वेदों के व्रतों में भक्ति नहीं तो कहते हैं ये किसके समान है, मेदस छेद, केवल शरीर का फैट कम कर रहे हैं बस। ये तपस्या जो है, ये उपवास, ये केवल कुछ वजन कम हुआ शरीर का बस, और कुछ नहीं। फिर वो आगे कहते हैं सर्वम हुतम भस्मनि, यदि किसी ने यज्ञ होम इत्यादि का अनुष्ठान किया है परंतु उसमें भगवान की भक्ति नहीं, तो सर्वम हुतम भस्म, उस हुत उस होम में केवल भस्म फेंकी जा रही है और भस्म के ऊपर घी फेंका जा रहा है। तो जब जली हुई भस्म के ऊपर घी फेंका जाता है तो धुआं ज्यादा उठता है। इसलिए नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे वो यज्ञ वहां पर कर रहे थे, और जब सुत गोस्वामी वहां नैमिषारण्य पहुंचे तो ये सारे 88,000 ऋषि मुनि सुत गोस्वामी को कहते हैं कि हमारे मुंह काले हो गए हैं इस यज्ञ में बैठ बैठ कर, आप भागवत सुनाइए, और कुछ नहीं मिला हमें इस यज्ञ के द्वारा, क्या मिला, कालिक, केवल धुआं उठ उठ के मुंह काला हुआ है हमारा, इसलिए आप भागवत सुनाइए जिसके द्वारा जो हमारे अंदर का कालापन है और ये बाहर का भी सब मैल दूर हो। तीर्थानाम अवगाहनानी च गज, कुलशेखर महाराज कहते हैं कि तीर्थ में स्नान, वहां पर स्नान यदि बिना भक्ति को कोई कर रहा है तो वह गज स्नान के समान है। हाथी का स्नान, जैसे कि हाथी स्नान करने के पश्चात फिर बाहर निकलता है और फिर से माटी में अपने आप को अपने शरीर को लोट लेता है, पाउडर वो लगाता है बाद में टैल्कम पाउडर, तो अर्थात स्नान करने के बाद जब टैल्कम पाउडर लगाया जाता है तो वो गज स्नान के समान है। तो हाथी सोचता है कि अरे मुझे कहां टैल्कम पाउडर मिलेगा, तो इतनी सी डब्बी से तो उसके कुछ होगा नहीं, तो इसलिए बाहर की जो रेती है उसको टैल्कम पाउडर समझ के फिर लौटता है। महाराज कुलशेखर कहते हैं कि ये सब शास्त्रों में निर्धारित क्रिया हैं कि आमनाय का अभ्यास, वेद व्रत का पालन, होम यज्ञ इत्यादि करना, तीर्थ में स्नान करना, ये सब शास्त्रों में निर्धारित ये सब बताया गया है नियम हमको, परंतु ये कहते हैं इनमें यदि भक्ति नहीं तो ये बेकार फालतू के। इसलिए वो अंत में कहते हैं द्वंद्वां भोरुध संस्मृति विजयते देवस नारायण, यदि भगवान श्री नारायण के सामने कोई दोनों हाथ जोड़कर खड़े होकर पूर्ण भक्ति से उनकी आराधना करे तो वो जो दोनों हाथ जोड़कर पूर्ण भक्ति से भगवान श्री नारायण की आराधना की है, यदि केवल उनका नाम नारायण ले लिया दोनों हाथ जोड़कर, संस्मृति विजय थे, ये जो पूरी संस्मृति है जन्म मृत्यु का चक्र विजय थे, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। जैसे अक्सर हम केवल जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में अक्सर कई बार धारणा ये बन जाती है कि हाँ गोवर्धन की परिक्रमा पूरी कर लें कैसे तो मर घीस कर, तो हो गई मेरी परिक्रमा इस साल की। तो यदि हम वो कैलकुलेटिव माइंड से परिक्रमा करेंगे तो भगवान भी फिर कैलकुलेशन करते हैं, फिर क्या हुआ कि जितना चले उतना स्टैमिना बढ़ा खाली चलने का, बस भक्ति नहीं बढ़ी। राधा कुंड में स्नान, जमुना में स्नान, इतना सुना है राधा कुंड और जमुना का स्नान, तो कैसे तो डुबकी लगानी है आंख नाक बंद कर कर, क्योंकि कई बार वो पानी इतना ठंडा रहता है और वो पानी इतना स्वच्छ नहीं दिखता। सबसे बड़ी तकलीफ तो तब होती है जब हम गंदगी देखते हैं वहां, बाहरी गंदगी। 94 की यात्रा की बात है, हम गए थे तो केशी घाट पर सबसे पहले, अब हम लोग सब जमुना में पहली बार वृंदावन गए और जमुना में केशी घाट में स्नान करने वाले हैं, तो 1.5 घंटे का प्रवचन हुआ और उस प्रवचन में केवल जमुना स्नान की महिमा बताई गई केशी घाट पर। और पूरी सब कुछ सुनने के पश्चात अब तैयार, जमुना में अब स्नान होगा, क्या सुना देखो क्या 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 फल मिलने वाला है, पूरा सब लिस्ट निकाल लिया। और जैसे ही हम अब स्नान के लिए नीचे जमुना में उतरने ही वाले थे तो सामने एक मृत शरीर जिसका सर भी नहीं केवल धड़ नीचे का, वो सब भयानक दिखता हो, वो ऐसे वो तैरते हुए जा, मतलब तैर तो नहीं रहा था, वो तो मरा हुआ था। तो जमुना के पानी पे से वहां से गुजर रहा, तो अब उसको देखकर सारा लेक्चर गया। इतना सब कुछ सुना था कि भगवान जल क्रीड़ा, जल क्रीड़ा इसमें करते थे भगवान, जमुना का पानी ऐसा कलकल करता हुआ, परंतु कलकल के साथ वो जो कल का मरा हुआ देह। तो हम अभी कई तो आंख नाक बंद कर कर कूद गए, परंतु हम तो रुके वहां पर कुछ 45 मिनट वहां पर रुके, 45 मिनट से 1 घंटा रुके, पूरा पानी जब तक वहां का नहीं चला गया। और फिर जब देखा कि 3-4 किलोमीटर दूर चला गया है वो, तब भी आंख नाक बंद कर कर 3 डुबकी लगाकर बाहर, परंतु धारणा क्या, हां लगा ली डुबकी। कार्तिक के महीने में वृंदावन में केशी घाट में लगाई डुबकी। तो फिर आपस में एक दूसरे से पूछे, तो क्या परिवर्तन पाया 3 डुबकी के बाद, कौन से दिव्य भाव जागृत हो गए अब, अष्ट विकार, विकार जागृत हुए कुछ कुछ, किसी न किसी प्रकार के विकार जागृत हुए, परंतु वो दिव्य भाव वाले विकार थे कि पता नहीं कौन से विकार थे। एक बार शिवजी और पार्वती, उनकी चर्चा चल रही थी, तो चर्चा में पार्वती और शिव जी से पूछती हैं कि ये लोग जो संगम में इतना स्नान करते हैं और कहा गया है कि इनकी मुक्ति निश्चित है, ये सभी मुक्त हो जाते हैं संगम में स्नान करने से, त्रिवेणी संगम में? शिव जी ने कहा नहीं, केवल जिसका पूर्ण विश्वास है उस संगम की शुद्धता में, केवल उसी व्यक्ति की उसका मोक्ष निश्चित है। तो पार्वती अब शिवजी से पूछती, तो कैसे पता लग गया कि किसका विश्वास है किसका नहीं है? तो भगवान शिवजी पार्वती से कहे, ठीक है, हम परखते हैं सबको। तो हम एक बहुत ही निर्धन गरीब भिखारी दंपति वो संगम के तट पर बैठते हैं, और शिवजी वो पति बने, और वो भी कुष्ठ रोग जिनको हुआ ऐसे। और पार्वती से कहा कि अब जो भी यहां से संगम से स्नान कर कर आ रहा है उनको कहना कि आपकी मुक्ति निश्चित है यदि आप जो अब शुद्ध होकर आए हो संगम में स्नान करने के पश्चात मेरे पति को स्पर्श करो और उसका सारा कुष्ठ रोग दूर हो जाए, अर्थात आप सही तरीके से स्नान की, नहीं तो गज स्नान। तो अब जो भी वहां पर डुबकी लगाकर आए उनको जब पार्वती देवी ने ये सब पूछा तो सभी एक दूसरे को देख रहे थे, स्पर्श करें या ना करें, कुछ हुआ नहीं तो फिर पर्दाफाश हो जाएगा। तो किसी ने स्पर्श नहीं किया, केवल एक छोटा सा बालक, उसे उसकी माता पिता ने बताया था कि संगम में स्नान करना कितना महत्वपूर्ण है, तो वो डुबकी लगाकर जैसे ही बाहर आया तो वो इतना विश्वास उसे संगम में स्नान करने का, जब पार्वती देवी ने पूछा तो हाँ अरे निश्चित ही मुझे बताया गया है कि यहां पर स्नान करने से मुक्ति निश्चित है, तो किसे स्पर्श करना है? हाँ मेरे पति को स्पर्श कीजिए। जैसे स्पर्श किया भगवान शिव जी ने दर्शन दिया उस बालक को कि इसको जो विश्वास है इसके विश्वास के वजह से इसे मुक्ति प्राप्त होगी। गुण, वहां पर वो गुण देख रहे थे। इसलिए अब ये सारी जो भक्ति की क्रियाएं हैं, हमको हालांकि सब कुछ दिया गया है, ये उस बंदूक और उस गोली के समान है कि जो हमारे सारे अनर्थों को मार दे, परंतु जब तक उसके अंदर बारूद नहीं उस गोली में, तब तक केवल फट फट आवाज आएगी। दिवाली के जो टिकली होती है ना, वो बंदूक बहुत आवाज करती, दिखने में एकदम सही बंदूक दिखती है आजकल, और वो जो जैसे वो लोग पिक्चरों में देखते हैं उस प्रकार से फूंक मारते हुए ऐसे चलाते हैं वो बंदूक। छोटे बच्चों को देखा, वो जैसे देखकर आए टीवी में वैसे बंदूक निकालेंगे और दिखने में भी एकदम काली काली वैसी चमकती हुई, और उसको ऐसे घुमाएंगे पहले, फिर घुमाने के बाद फिर ठाक, तो सामने वाला बच्चा बोलता है अरे क्या, मेरे पास भी तो टिकली है, वो भी ठाप। क्योंकि कुछ निकल तो रहा नहीं उसमें से, केवल आवाज फट फट ठाप ठाप। तो वैसे ही कई बार हमारी भक्ति भी वैसे ही हो जाती है, जैसे वो बंदूक दिखने में एकदम चिलकती हुई काली काली, वैसे हमारी बीड़ी बैग भी एकदम नई बड़ी बड़ी, जैसे वो घुमाते बंदूक को पहले वैसे हम भी घुमाएं माला को। और फिर एक दो तीन 16, ठाप ठाप ठाप। लेकिन क्या था, क्या बस टिकली। तो इसलिए हमें हमारी जो भक्ति की क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के अंदर ये भक्ति का बारूद इसे भरना है। और इसलिए ये जो श्लोक इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है, कैसे हमने शुरुआत की थी, सारे उपनिषद वेद ग्रंथ का सार भगवद गीता, भगवद गीता का सार भगवद गीता के मध्य के 6 अध्याय और उन 6 अध्यायों का सार 9वां अध्याय, 9वां अध्याय का सार ये श्लोक। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर। इतनी बार भगवान मन 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 कहे हैं, अर्थात हमारे मन से गुणात्मक दृष्टिकोण से हम भगवान की भक्ति जब करेंगे तब जाकर भगवान आकृष्ट होंगे हमारी भक्ति से। और जब भगवान आकृष्ट होंगे तब जाकर कोई आशा है कि हम भगवत धाम या भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।